भद्रम कर्णे शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षैर्यजत्रा स्थिरंगैस्तुष्टुवाग्मं स्वस्य नो हृदयसीमहि देहितं यदायुः। सुनते सुनते लगभग आत्मज्ञान की प्राप्ति प्रवचन करने से उपदेश देने से भी प्राप्त होती है। मेधया और पढ़ने की जो बुद्धि है, मेधा से यही ग्रहण करेंगे। मेधा दो प्रकार की होती है, एक आध्यात्मिक विज्ञान की मेधा होती है और एक भौतिक विज्ञान की मेधा होती है। पढ़ना तो भौतिक विज्ञान को भी चाहिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान में ही स्वाभाविक ही हमारी प्रवृत्ति होती है जन्म से। अब भौतिक सारा जगत भौतिक विज्ञान के पीछे ही पड़ा हुआ है। अब कितने यहाँ गिने चुने इस पहलगाम में कई हजार की आबादी होगी, कितने आदमी होंगे जो तुम्हारे की तरह अध्यात्म ज्ञान के लिए कहीं प्राप्ति के लिए जाते हो या साधना करते हो या अभ्यास करते हो, तो कोई बिरली ही। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धे, सहस्रों मनुष्यों में कोई बिरली ही महान आत्मा इस अध्यात्म ज्ञान में प्रवृत्त हुआ करते। तो फिर आगे कहा मंत्र में, न मेधया न बहुश्रुते, सुनते चले जाओ। जैसे रोज आगे, मैं आज से कोई 12 साल पहले ऐसे व्याख्यान नहीं दिया करता था, ये अभ्यास से पहले सिर्फ 2-4, 5 मिनट, 10 मिनट अभ्यास संबंधी बात कहा करता था, ताकि बाहर के संस्कार और जागृत ना हो। अब इतना तो रोज का विज्ञान नहीं है कि जो तुम्हारे मस्तिष्क के इतने ही शरीर के विषय में ही विज्ञान सुनाता रहूं, इतना तो मुझे भी नहीं आता जितना शरीर है। तो अब कितना सुनाया जाए इसके विषय में, तो पहले अभ्यास संबंधी ही बात किया करता था। और उपदेश का समय इतवार को एक हमने रखा हुआ था, कथा का 2 घंटे का प्रति इतवार को सत्संग हुआ करता था, और बाकी ऐसे रोज प्रातः सायं जैसे आधा आधा पौना पौना घंटा अभ्यास का समय। अब लोग पसंद ही ऐसी बातों को करते हैं, सुनने का भी तो करण रस भी बड़ा जबरदस्त होता है, तो इसलिए करण रस के वशीभूत होकर के सुनते। तो उसी ने बहुश्रुतेन कहा है यहाँ मंत्र में कि बहुत सुनने से भी ये प्राथमिक यमे ऐसा धृणुते, यम माने जो, ऐसा माने इसको, धृणुते भगवान को स्वीकार करता है, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न विशेष करता है ध्यान समाधि आदि के, या यम जो भगवान इसको स्वीकार करता ग्रहण करता है। तो परंतु ये बात तो नहीं भगवान तो सबको ग्रहण किए हुए, पता नहीं मैं मुझे भगवान के विषय में लोग तो बहुत से अब कहने लगे कि ये नास्तिक से होते जा रहे हैं, पर मैं परमात्मा को वैसा मानता हूं जैसा विशुद्ध परमात्मा है। मैं परमात्मा को मुझे बहुत अध्ययन समझ करने से भगवान निर्गुण समझ नहीं आया है। तो जो सर्वव्यापक सर्वत्र रहने वाली सत्ता है, एक समान ही सब जगह वो रहती है, फिर उसके अंदर किसी गुण विशेष की और आवश्यकता क्या है? गुणों का प्रादुर्भाव एक देशी में हुआ करता है, सर्वदेशी में गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होता, एक गुण के पश्चात दूसरा गुण नहीं आता। तो ये सारे गुण हम लोगों ने भगवान के ऊपर आरोप किए हुए, जैसे भगवान को समझ लिया कोई बैठा होता किसी मकान में, किसी पहाड़ पर, पर्वत में, किसी लोक में, रूपांतर में, सारे मिलकर बात कह जाते तो ऐसा तो वो किसी ने देखा नहीं समझा नहीं। पर जो कुछ भी है वो, तो ये गुणों की जो बात है ये हम लोगों ने जैसा जैसा उसके विषय में समझ में आया वैसी वैसी बात कही। तो बहुत से आचार्य सगुण और निर्गुण मानते हैं, तो ये दोनों विरोधी धर्म से हैं, सगुणता भी हो और निर्गुणता भी, या तो सगुण ही होता है। अभी तो हमें अपने आप का ही पता नहीं लगा इस शरीर में रहने वाले का, हमारा आवास इस शरीर में है और मैं अपने से भिन्न शरीर को कह रहा हूं, तो अभी मुझे अपने आप का ही यदि पता नहीं लगा है तो मैं इतने बड़े ब्रह्मांड में रहने वाले सर्वव्यापक को का पता कैसे लगा सकता। तो पहले तो आवश्यकता है अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की, मैं क्या हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, इस शरीर में मैं कितना बड़ा हूँ, कितना लंबा हूँ, कितना चौड़ा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, नीला हूँ, सफेद हूँ, कैसा मैं हूँ। अगर ये पता लग जाता है अपने आप का इस शरीर में, छोटे से 5-6 फुट का ही तो है, ज्यादा बड़ा तो है, तो समझो कि शायद उस ब्रह्मांड में रहने वाले की अनुभूति भी हो जाएगी, उसकी भी बात समझ में आ जाएगी। पहले इस छोटे से को तो समझ लो, इस शरीर को, इसमें रहने वाले को, फिर उसकी बात करना। तो उसके पीछे तो पड़े हुए हो, अपने आप का पता नहीं है, कोशिश करनी चाहिए हमें अपने स्वरूप का तो कम से कम ज्ञान हो जाए। फिर सब आचार्य विद्वान लोग ये कहते हैं, पराया जो आत्मा को मानने वाले हैं, कि जैसे ये आत्मा चेतन है तुम्हारे शरीर में, ऐसे ही परमात्मा भी चेतन है। इस आत्मा से ये शरीर चल रहा है और उस परमात्मा से ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो इस आत्मा से चलने वाले शरीर में इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो जब इस चेतन सत्ता का ज्ञान हो जाएगा तो वो भी एक प्रकार की चेतन सत्ता है। अब इन दोनों चेतन सत्ताओं में विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर भेद कर दिया। क्या भेद कर दिया? ये कहने लग गए कि इसमें जो ये चेतन सत्ता है ये सावयव है, अणु शब्द का इसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अणु 60 परमाणु जब संघात भाव को प्राप्त होते हैं तब एक अणु बनता है। तो 60 अगर परमाणु इकट्ठे कर लिए जाएं, जर एटम जिनको कहते हैं, एटम ही कहेंगे, बल्कि एटम भी अब टूट कर खंड खंड हो गया, उसका भी विभाग कर दिया है, उसके साथ में जो एनर्जी सी निकलती है उसको मानने लगे। तो खैर, हम मोटी बुद्धि के आदमी हैं, हम परमाणु तक ही बात करते हैं, ज्यादा नहीं करते। तो 60 परमाणु जब संघात भाव को प्राप्त होते हैं तब एक अणु बनता है। तो इस अणु के समान जीव आत्मा की उपमा दी है और इसमें व्याप्य व्यापक भाव संबंध माना है। जब हम इस चेतन सत्ता में व्याप्य व्यापक भाव संबंध मानेंगे तो ये भी परिणामी माननी पड़ेगी, सावयव माननी पड़ेगी और इसका कोई उपादान कारण भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सावयव पदार्थ होगा उसका अवश्य उपादान कारण होगा। आप कहेंगे कि प्रकृति भी तो सावयव है, उसका और कोई उपादान कारण बतलाओ। प्रकृति सावयव है, ठीक है, क्योंकि सावयव वह पदार्थ हुआ करता है जिसमें परिणाम कर्म प्रारंभ हुआ करता है, पर कहीं तो उसकी स्थिति अंतिम सावयव की भी माननी पड़ेगी। तो अंतिम अवस्था जब उसको काटते काटते, परमाणु को भी काटते काटते चले गए, एक प्रकार की एनर्जी सी निकली और वो सब एनर्जियां समान सी हो गई, एक एनर्जी के साथ में मिल गई और वो भिन्न सत्ता व्याप्त सी बन गई एक परमाणु को छोड़ करके। तो इसी प्रकार इन परमाणुओं का भी विकिरण होते होते सूक्ष्म भाव को प्राप्त होकर के अंतिम ये जाकर के प्रकृति की अवस्था में ठहरे। वो एक अंतिम गया स्थिति सी मान ली कही, वरना अंतिम स्थिति कोई नहीं मानेंगे तो अनवस्था दोष चला जाएगा, कहीं उसकी स्थिति नहीं होगी। तो इसलिए परिणामी पदार्थ की भी कहीं स्थिति माननी पड़ेगी, जो सावयव है, जिसमें विकार भाव होगा, जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था आती है। मैं भी बहुत अध्ययन कर रहा हूं, बहुत मनन कर रहा हूं, परमात्मा के अंदर ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही कि भी उसमें भी कोई इस प्रकार की सावयवता बात सिद्ध करे, तो फिर वो भी प्रकृति के समान परिणामी हो जाएगा। जैसे जड़ प्रकृति परिणामनी है, खंड खंड होकर के चलने वाली है, ऐसे सर्व व्यापक जिसको चेतन सत्ता, चाहे तुम उस प्रकृति से उसको सूक्ष्म ही कह लो, पर व्यापक तो कहोगे ना, प्रकृति भी तो व्याप्त है सारे ब्रह्मांड में अपने कार्यों के अंदर। तो ऐसे ही वहां चेतन के परिणाम होंगे, वहां जड़ के परिणाम होंगे, वहां चेतन परिणित होकर के अवस्थांतरों को प्राप्त होगा और कहीं जाकर ठहरेगा, जैसे ये प्रकृति आन करके पृथ्वी पर ठहर गई। तो ये बातें हैं, हम तो क्योंकि यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेदा, जो विज्ञान, मेरे विचार भी गलत हो सकते हैं, मैं कोई अपने विचारों पर मोहर नहीं लगाता, क्योंकि मैं स्वयं ही जो आज से 50 वर्ष पहले विचार थे उनको स्वयं गलत कर साबित करता जा रहा हूं। जो जो विज्ञान का विकास होता जा रहा, पहले विचारों को मैं स्वयं, जब मैं अपने विचारों को गलत साबित करता जा रहा हूं, तो मुझे तुम्हारे विचारों को गलत साबित करने में क्या आपत्ति होगी? जैसे अपने विचार गलत साबित किए, तुम्हारे भी कर सकता हूं। तो ये बातें हैं जो कि मनन की है, निरध्यासन की विचारणीय है, समाधि की अवस्था में अनुभव करने योग्य है ये बातें। तो इसलिए बहुत सुनने पढ़ने लिखने से पुस्तकों से ये ज्ञान आता है। अब शांति से आप बैठोगे, मनन करना, चिंतन करना, आत्मा के विषय में समझना अपने स्वरूप को, मैं किस रूप से इस आत्मा में हूँ, इस मस्तिष्क में एक देश में बैठा हूँ कि हृदय के किसी देश में बैठा हूँ, या सारे शरीर में ही मैं व्याप्त होकर के ठहरा हूँ, मैं इसके एक देश में रहता हूँ कि सर्व देश में रहता हूँ। तो ये बातें हैं जो आपको अनुभव में लानी है। मेरी बात भी नहीं मानो आप, शास्त्रों की भी बात, मेरे भी कल को शास्त्र बन सकते हैं, मेरे ग्रंथों को भी लोग शास्त्र कहने लगेंगे, जैसे पातंजल को दूसरे के आचार्यों की, सांख्य को, वेदांत को शास्त्र कहने लगे, मेरे ग्रंथों को भी शास्त्र कहा जा सकता है, औरों के ऐसे वर्तमान में चाहे जूते मारते रहे पीछे पूजा भी करने लगते। तो कहने का तात्पर्य यह है, युक्ति और प्रमाण और तर्क से जो विज्ञान सिद्ध हुआ करता है वो यथार्थ हुआ करता है। तो मैं तो अभी इसी बात पर पहुंचा हुआ हूं कि एक अंतिम अगर इसको भी गया अणु मान लेते हैं शरीर में जीवात्मा को, तो इतना ही अणु क्यों होवे, ये शरीर के बराबर क्यों ना हो जाए? जब तुम सावयव मानते हो, 60 परमाणु को संघात कर करके एक चेतन सत्ता बनाते हो जीवात्मा की, ऐसे सहस्रों क्यों नहीं और परमाणु और कण इकट्ठे कर करे और शरीर व्यापी शरीर के बराबर ही क्यों नहीं आत्मा को मान लेते? चेतना तो सर्वत्र प्रतीत होती है, जीवनी शक्ति एक एक अंग अंग में ठहरी हुई है। तो क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि ये जीवात्मा की चेतन सत्ता इस शरीर को व्याप्त किए हुए नहीं है? क्या तुम्हारे पास अणु ही प्रमाण का है? हम कहते हैं जितना बड़ा ये शरीर है उतनी बड़ी चेतन सत्ता है, और जैसे अणु आत्मा बहुत से परमाणुओं के संघात को प्राप्त होकर के इतना बड़ा, ऐसे सहस्रों करोड़ों परमाणु जुड़ करके और चेतन सत्ता बड़ी जीव शरीर इस शरीर के बराबर आत्मा बन सकता है जब छोटा इतना बनता है? तो जब कट्ठे अणुओं को इकट्ठा कर करके परमाणुओं को ही चेतन सत्ता को सावैव ही बनाना है, परमात्मा की उसमें व्याप्ति माननी है, तो इतना बड़ा क्यों ना मान लो, झगड़ा ही खत्म हो जाए।